ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यदवन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र अवसे नमो नमः। किरात हूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भायमनाखसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसेते यदुम्रेषु पुरुष भोक्ते गुणान्षोडशषोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीयद्वैत्वगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 4। श्री शुक उवाच कालिंद्याम कालिष्या आसेत हृदय कश्चित् विष अग्निना स्रप्यमाण पयाह यस्मिन् पतन्ति उपरिग्ना उपरिगाह खगाह। श्री शुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीत् कालिन्द्यां कालियस्यासीत् हृदय कश्चित् विषाग्निना हृदय कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाणप्यायस्मिन् पतन्तोपरिगाखगा। श्री शुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीत् हृदय कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाणप्यायस्मिन् पतन्तु परिगाखगा। श्री शुक उवाच कालिन्द्या कालियस्यासीत् हृदय कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाणप्यायस्मिन् पतन्तु परिगाखगाः। बोलिए कालिन्द्यां कालियस्यासीत् हृदय कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाणप्यायस्मिन् अत्यन्तोपरिगाखगा। वैष्णवी श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंद्याम यमुना नदी के भीतर कालियस्या कालिय नाग का आसित था हृदय झील सरोवर कुंड कश्चित कोई विषा उसके विष की बोलिए अग्निना अग्नि से स्रप्यमाण गर्मी से उबलकर पया है इसका जल यस्मेन जिसमें पतंति गिर पड़ते थे उपरिगा है ऊपर से जाते हुए खगा है पक्षीगण। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंदी नदी के भीतर एक सरोवर था जिसमें कालिय नाग रह रहा था जिसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। पुनरावृत्ति करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंदी नदी के भीतर एक सरोवर था जिसमें कालिय नाग रह रहा था जिसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। तात्पर्य इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है कि कालिय कुंड नदी की मुख्य धारा से अलग स्थित था, अन्यथा यमुना का जल मथुरा जैसे नगरों तथा उसके आगे के स्थानों में भी विषैला हो गया था। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा कालिय नाग को प्रताड़ना अर्थात कालिय दमन। यह भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की लीला है। वृंदावन में भगवान ने अनेकों लीलाएं की, जैसे वत्सासुर बक्कासुर अघासुर धेनुकासुर प्रलंबासुर कालिय दमन गोवर्धन लीला चिरहरण लीला गोपियों के साथ रासलीला, ये सब वृंदावन की लीला है। आइए मन की गति से हम सब वृंदावन में चलें और भगवान की इन लीलाओं का आस्वादन करें। श्रीपाद सनातन गोस्वामी वृंदावन का अर्थ करते हैं वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणात् इति वृंदावनम, जो सबका पालन पोषण करता है रक्षण करता है उसको वृंदावन कहते हैं। जहां तुलसी की चारों तरफ विरवे लगे हुए हैं या तुलसी के वन हैं, जहां की वृंदावन देवी हैं जो वृंदावन को सजा करके रखी हैं भगवान की लीला करने के लिए, तो धन्य वह वृंदावन जहां घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दधि को और कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को अली मोहे लागो वृंदावन्नी को। धन्य वह वृंदावन धाम जहां घर घर में भगवान कृष्ण विराजमान हैं, घर घर में ठाकुर जी हैं, जहां तुलसी महारानी विराजमान है, जहां यमुना की धारा प्रवाहित होती है, जहां दूध और नदी की धारा बहती है, जहां के निकुंजों में भगवान श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के साथ विहार करते हैं, ललिता विशाखा आदि सखियां जिनकी सेवा करती हैं, जहां की रज मोती जैसी चमकती है, वह है श्री वृंदावन धाम। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। जहाँ के वृक्षों से पत्तों से राधे राधे की दिव्य ध्वनि निकलती रहती है, तो उस वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण काली दमन की लीलाएं की तो बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ, श्रीराम सुबल आदि सखाओं के साथ लीलाएं करते हुए वे यमुना नदी के तट पर आए। उस समय उनके साथ बलराम जी नहीं थे, क्योंकि भगवान को काली दमन की लीला करनी है। कहीं काली दमन की लीला में बलराम जी विघ्न उपस्थित कर दें, क्योंकि महासंकर्षण है और शेष हैं, उन्हीं की जाति के आते हैं। ऐसे भी उनका जन्म नक्षत्र था, उसमें भाग नहीं लिए थे। गौ तथा ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर गए। जेठ का महीना था, कड़ी धूप, धूप से गौवें और ग्वाले प्यास के मारे तड़प रहे थे। प्यास से व्याकुल होकर के यमुना जी में गए और यमुना जी का जल पिए। वह जल दूषित था और जल को पीने से सारे ग्वाल बाल और गौवें अचेतन अवस्था में हो गए, मूर्छित हो गए। भगवान ने देखा मेरी गौवें, मेरे ग्वाले, मेरे मित्र सभी अचेतन अवस्था में हो गए, निष्प्राण हो गए। तो भगवान ने झट से गौवें को ऊपर, अपने मित्रों को ऊपर, अपने अमृतमय चितवन दृष्टि से कृपा की वृष्टि किए। कृपा की दृष्टि से भगवान ने ऐसे देखा, देखते ही सारे ग्वाल बाल गौवें सब सजीव हो गए और ग्वाल बाल हंसते हुए खिलखिलाते हुए अपने मित्र कन्हैया के साथ गले में गले लगा करके मिले। भगवान ने सबको जीवित कर दिया। यह है भगवान की अमृतमय दृष्टि। आप लोगों ने इसके पहले सुना होगा, आगासुर की वध में, आगासुर के मुख में जब सारे ग्वाले प्रविष्ट हो गए और निष्प्राण हो गए, तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी ग्वालों को जीवित कर दिए। और समुद्र मंथन में भी जब देवता और दानव मंदराचल पर्वत को टांग करके लाए, पर्वत इतना विशाल था कि पर्वत के भार को वे सब सहन न कर सके, पर्वत गिर पड़ा और पर्वत के अंदर देवता और दानव दोनों कुचल गए। किसी के हाथ पांव टूट गए, किसी के सिर फट गए, घायल हो गए। भगवान ने बिना मलहम पट्टी का, बिना ऑपरेशन किए, बिना चीरफाड़ किए, केवल अपनी अमृतमय दृष्टि से, चितवनमय दृष्टि से सभी देवताओं को, दानवों को स्वस्थ कर दिए। यह है भगवान की कृपा दृष्टि, जिनकी दृष्टि से इस जगत की सृष्टि है, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि पर यह जगत आश्रित है, भगवान कृपा दृष्टि से, भगवान अपनी दृष्टि से जगत की सृष्टि करते हैं, पृथ्वी में गर्भाधान करते हैं। ममयो निर्महत ब्रह्म तस्मिन गर्भाधामे हम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। भगवान की दृष्टि में अद्भुत शक्ति है। अमृतमय दृष्टि से भगवान ने ग्वाल बालों को जीवित कर दिया। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि हे विद्वान मुनि, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके आप यह बतलाएं कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिये नाग को प्रताड़ित किया और वह कालिये नाग किस तरह अनेक युगों से वहां रह रहा था इसके बारे में आप बताएं। यमुना जी का विषैला जल पी करके सारे ग्वालवाल अचेतन अवस्था में हो गए, तो जहां जल पिए वहीं पर कालिये नाग का सरोवर था जिसमें वह निवास करता था। यहां वर्णन है, कालिंद्याम कालियस्यासे हृदय कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाण प्यायस्मिन् पतन्तु परिगाखगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंदी कालिंद्याम, कालिंद्याम का अर्थ होता है यमुना नदी, हिमालय के दक्षिण पश्चिम भाग में कलिंदगिरी है, कलिंदगिरी है जहां से यमुना जी निकलती हैं, तो कलिंदगिरी से निकलने के कारण यमुना जी का एक नाम है कालिंदी। कलिंद का अर्थ होता है सूर्य, तो सूर्य की पुत्री हैं यमुना जी और यमराज पुत्र हैं। कलिंदगिरी से निकलने के कारण यमुना जी का नाम है कालिंदी, जो भगवान कृष्ण की पटरानी है। तो यमुना जी का जल, यमुना जी के जल में माने यमुना जी की मुख्य धारा से अलग सटे एक कुंड था जिसको कालिये हरद कहा जाता था। हरे कृष्णा, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जगतगुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। यमुना जी की मुख्य धारा से सटे एक कुंड था जिसको कालिये हरद कहा जाता है, सरोवर या कुंड उसे कहा जाता है, उसी कुंड में वह निवास करता था। उसका कालिये नाम है, काला होने से उसका नाम है कालिये, नाग विषैला होता है, वह विषैला सर्प था। यहां आचार्यों ने लिखा है कि कालिये कुंड नदी की मुख्य धारा से अलग स्थित था, घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों की तट तक ले जाती थी और विषैली आयु के संपर्क में आने से तट की सारी वनस्पति तथा जीव जंतु मर जाते थे। वह इतना विषैला था कि उसके मुख से, उसके आंखों से हमेशा विष निकलते रहते थे और विष के प्रभाव से यमुना जी का जो काली हरद था उसके सभी जल खोलते रहते थे। सरोवर को 8 मील तक चौड़ा बताया गया है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन है कि वह सरोवर 8 मील चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। 4 कोस में वह सरोवर था, देवता लोग भी पास नहीं करते थे क्योंकि वह विष के प्रभाव से उसके वाष्प उड़ते रहते थे, तो पक्षी भी उड़ते थे तो झुलसकर गिर पड़ते थे, मर जाते थे, इतना वो विषैला सर्प था। उसके विष के प्रभाव से यमुना जी का जल खौलता रहता था। और कालिये नाग यमुना जी के अंदर भीतर अपना घर बनाकर रखा था, पूरे परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ वह वहां निवास करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस विषैले जल के प्रभाव से कोई भी प्राणी वहां नहीं जा पाते थे, जो भी जल पीता था वो मर जाता था, जैसे ग्वाल बाल जलपान किए और निष्प्राण हो गए। तो इस लीला में याद रखिए, इस लीला में भगवान के षड ऐश्वर्यों में से बल लीला का प्रदर्शन किया गया है। ईश्वर जस्य वीरजस्य, जो भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, ईश्वर जस्य वीरजस्य समग्रस्य ऐसा श्रिया ज्ञान वैराग उश्चैव शरम भग इतिंगणा है। तो भगवान के बल का प्रदर्शन किया गया है। किस प्रकार से भगवान एक सर्प के साथ, विषैले कालिय नाग के साथ युद्ध करते हैं, उस युद्ध का वर्णन है, युद्ध करके किस प्रकार उसे परास्त कर देते हैं और परास्त करके उसे अभय दान देते हैं, इस लीला का इस प्रसंग में वर्णन है। अब उसे आप ध्यान से श्रवण करें। तो कालिय नाग के 101 सिर थे, उसके 101 फण थे और उसे हमेशा 20 और आग निकलते रहते थे। जैसे कोई व्यक्ति कुआं खोदता है तो उसे जल निकलता है, और उस कुएं से यदि जल को खींचा जाता है तो फिर कुएं में पुनः जल भर जाता है, जल स्रावित होते रहते हैं, नीचे से आते रहते हैं चारों तरफ से। उसी प्रकार से कालिय नाग जो विषैला नाग था, इसके शरीर से हमेशा विष निकलता रहता था, क्योंकि विषैला प्राणी है, भगवान इन्हें विषैला बनाया है। चार कोश में वह सरोवर था। जब भगवान ने देखा कि कालिय नाग के प्रभाव से, विष के प्रभाव से हमारे ग्वाल बाल, हमारी गौवें सब अचेतन अवस्था में हो गई, इसके विष के प्रभाव से सब निष्प्राण हो गए, मैंने अमृतमय दृष्टि से उनको जीवित किया, तब इस कालिय नाग को वृंदावन से, काली हरत से भगाना चाहिए, भगवान ने ऐसा प्रण किया। तो इस लीला में वर्णन है, गोपाल चंपू में भी वर्णन आता है, भगवान ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने लगे, गेंद खेल रहे थे। तो खेल खेल में गेंद को भगवान ने काली हरद में फेंक दिया। तो सुबल ने कहा कि मेरा गेंद लाइए, मेरे गेंद को आपने क्यों फेंका? तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा गेंद लाता हूं। अब गेंद को लाने के लिए याद रखिए, या कालिय नाग को दमन करने के लिए भगवान ने अपना फेटा बांधा, कमर कसा, क्योंकि सर्प के साथ युद्ध करना है, फेटा बांधा भगवान ने, कमर कसा और बाल को भी भगवान ने बांधा, भगवान के घुंघराले बाल थे बड़े बड़े, बाल को भी भगवान ने बांधा, जैसे सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं वैसे भगवान कालिय नाग से युद्ध करने के लिए फेटा बांधकर, कमर कसकर तैयार हो गए और एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कदम के पेड़ पर चढ़कर भगवान ताली ठोके, कालिय नाग को ललकारे, जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तैसे ताली ठोकते हैं, उत्साहित करते हैं एक दूसरे को, जोश को बढ़ाते हैं, वैसे भगवान ने ताली ठोककर कालिय नाग को आवाज दिए, तेरा प्रतिद्वंदी अब तेरे सामने आ गया है। पेड़ पर चढ़कर भगवान ऐसे ताली ठोक करके जोर से उस कालिय हृदय में जंप किए, कूद पड़े। जब भगवान कूदे तो जोरों की आवाज हुई और चार सौ धनुष की दूरी पर, सौ धनुष की दूरी तक कालिय हृदय की तरंगे फैल गए। एक धनुष चार हाथ का होता है, जो धनुष है जो उसकी माप चार हाथ की है, तो सौ धनुष की दूरी पर मतलब 400 हाथ की दूरी पर, 400 हाथ की दूरी तक जल की तरंगे फैल गई, जल तरंगित हो गया, जैसे समुद्र में तरंगे आती रहती हैं वैसे कालिय हरद तरंगित हो गया और भगवान उस विषैले जल में कूदकर क्रीड़ा करने लगे। जल को मुख में लिए, मुख में लेकर के पानी की आवाज करने लगे और अपने भुजाओं को पटकने लगे जल में, जल के साथ भगवान खेलने लगे, जल विहार करने लगे। अब ध्यान से सुनिए, विचार कीजिए, जो विषैला जल है जो विष से खौलता रहता था और उड़ने वाले पक्षी आकाश मार्ग से गिर पड़ते थे, मर जाते थे, जिस जल में प्रवेश करने से भी व्यक्ति मर जाता था,
वैसे बिसैले जल में भगवान कृष्ण हैं कूद पड़े और उस जल को मुख में लेकर भगवान खेल खेल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की तालियां बजा रहे हैं, हाथ से जल पर आवाज दे रहे हैं, मुख से आवाज कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। काल के घर में भगवान गए हैं, याद रखिए। सर्प काल है, जिसको डस देगा वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन भगवान कालों के भी काल हैं। काल क्या करेगा? हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण से कहे, जाके डरे अति काल डराई, जोसुर अचुर चराचर खाई, तासो वैर कबौ नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जिनके काल से, जिनके भय से काल भी डरता है, प्रभु कालों के काल है, जिनकी पत्नी को तुम प्रिया को हर करके लाए हो, मैं तुझे निवेदन करता हूं तुम लौटा दो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। रावण नहीं लौटाया, जुआ अवस्था में मारा गया। तो भगवान कालों के काल हैं, सर्प के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, भगवान के ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, दूसरे प्राणी मर जाते थे, लेकिन भगवान का शरीर पूरा अमृतमय है, अमृतमय उनकी दृष्टि है, अमृतमय मई उनकी चितवन है, और शरीर भी बिल्कुल अमृतमय है, दिव्य शरीर है, सदघन चितघन आनंद घन भगवान का शरीर है। विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान खेलने लगे, जल विहार करने लगे। आवाजें गई, भगवान कूदे तो आवाज हुई, और वह आवाज कालिया नाग को सुनाई दी, क्योंकि वो यमुना जी के भीतर था। आवाज भगवान इसलिए दिए कि अब तेरा काल, तेरा प्रतिद्वंदी, तुझको हराने वाला तेरे सामने, तेरे घर में आ गया है, अब तू मेरे सामने आ जाओ। भगवान धनुष भी तोड़ते हैं तो जोरों की आवाज होती है, क्योंकि सारी दुनिया जान जाए कि भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। चुनौती दिए कालिये नाग को कि मैं तेरे सामने आ गया हूं, तेरे घर में प्रविष्ट हो गया हूं, तुम नीचे से अब ऊपर आओ और मेरे साथ युद्ध करो। कालिये नाग ने आवाज को सुना और नीचे से ऊपर आया, आकर के देखा कि अरे ये छोटा सा बालक, मेरा इतना विषैला जल, जो जल विष से खोलता रहता है, इस विषैले जल का तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखता रह गया, भगवान कूदे तो जल में हलचल मच गया, हलचल मच गया। सोचिए, जल में खलबली मच गई, वो देख करके अवाक रह गया कि मेरे विष का, विषैले जल का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आया और आकर के झट से भगवान के ऊपर अपने दंश का प्रहार किया, मर्मस्थल पर भगवान को उसने डसा, वक्षस्थल पर डसा, लेकिन भगवान के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान का अमृतमय शरीर है, विष जाते ही अमृत हो जाता था, जैसे शिव जी ने कालकुट नामक विष को पान किया, भगवान का नाम लेकर के पान किया, भगवान को नाम लेकर के पान किया, भगवान का नाम अमृतमय है, नाम के प्रभाव से विष अमृत हो गया। नाम प्रभाव जानो शिवनि को, कालकुट फल दिन्यो अमी को। उसी प्रकार से यहां कालिये नाग भगवान को डसता है, अपने विष का प्रभाव डालता है, लेकिन वह विष अमृत में बदल जाता है, भगवान के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से वह देख रहा है कि इनके ऊपर कुछ इसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वह भगवान को डसने का प्रयास किया, तो भगवान कालिये नाग के साथ, याद रखिए, अब कालिये नाग के साथ भगवान युद्ध करने लगे। कालिये ने देखा कि इसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, डसने का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो याद रखिए, सांप का एक नाम है चक्षुश्रवा। सांप को कान नहीं होते, सांप आंख से ही देखता है और आंख से ही सुनता है, चक्षुश्रवा उसका नाम है। चक्षु आंख से सुनना, श्रवा माने सुनना। तो काली नाग अपनी आंखों से विष उगलता था, मुख से विष उगलता था, क्योंकि वो सिद्ध था। याद रखिए, काली नाग सिद्ध था, वो आकाश में उड़ना जानता था, जैसा रूप चाहे वैसा रूप बना लेता था, लेकिन वो बहुत दुष्ट था। काली नाग बहुत दुष्ट था, भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके भी काली नाग को दया नहीं आई। आचार्यगण कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण श्री राम रूप में आए और सुपनेखा का सुरपणखा का नाक कान कटवा दिए, तो सुपनेखा के भाई खरदूषण युद्ध के मैदान में गए तो भगवान के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। धनुष बाण वे चला नहीं सके, भगवान के सौंदर्य को देख करके बिल्कुल उनकी भुजाएं अस्तंभित रह गई। कहा, कितना सुंदर ये स्वरूप है, ऐसा स्वरूप तो हमने दिखा ही नहीं। भले ही इसने हमारे बहन को कुरूप कर दिया है, लेकिन यह वध करने लायक पुरुष नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहां भगवान कृष्ण इतने सुंदर है, इतना दुष्ट विषैला काली नाग सर्प है, बदमाश है, कि भगवान छोटे बालक को देख करके भी, सुंदर स्वरूप को देख करके भी दया नहीं की। विषों से मतलब अपने विष दंत से उसने भगवान के ऊपर प्रहार किया, काटा, मतलब दुष्ट था काली नाग, दुष्ट हृदय का था। भगवान को डसा, डसने के बाद विष उगलने लगा, तो विष का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद काली नाग ने देखा कि इसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर काली नाग ने भगवान को अपनी कुंडली में लपेट लिया। कुंडली, सांप गरुण मारते हैं, कुंडली, अपने शरीर में भगवान को लपेट लिया। जब लपेट लिया तो भगवान निश्चिंत पड़े रहे। याद रखें, भगवान सर्प पर ही सोते हैं, शेषनाग है, सर्प पर ही भगवान सोते हैं। सर्प का शरीर शीतल होता है, ठंडा होता है, तो जब अपने शरीर में लपेट लिया, कुंडली में लपेट लिया, तो भगवान को भी सुख की अनुभूति हुई। अब आनंद लेने लगे। 2 घंटे तक भगवान बिल्कुल निश्चिंत पड़े रहे। अब इधर आगे की बात देखिए। अब ग्वाल बालों ने देखा कि कन्हैया जमुना जी में कूद गया, इसमें काली नाग रहता है, विषैला सर्प है। तब ग्वाले जाकर के झट से सुबल इत्यादि नंद बाबा जसोदा मैया को, उपनंदी को सूचना दिए, कन्हैया काली हृदय में कूद गया है और काली नाग ने उसे अपने कुंडली में लपेट लिया है। तो सारे ब्रजवासी दौड़े, मैया तो सुनते ही बिल्कुल थरथराने लगी। बाबा को व्याकुलता हो गई, मैया को व्याकुलता हो गई कि अब मेरा लाल नहीं बचेगा, काल के गाल में चला गया। लेकिन याद रखें, इस लीला में भगवान कृष्ण ने बलराम जी को नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? इसलिए नहीं लिया था कि बलराम जी रहेंगे तो मैया को, बाबा को, ग्वाल बालों को रोक लेंगे, काली हृदय में कूदने नहीं देंगे, नहीं तो वे लोग कूद करके अपना प्राण त्याग देंगे मेरे प्रेम में। देखिए भगवान के प्रति कितना प्रेम है, यह है प्रेम। देखिए सारे ब्रजवासी व्याकुल हैं, ग्वाल बालों के, गोपियों के, गोपों को भगवान प्राण थे, भगवान के बिना ग्वाले नहीं रह सकते थे, मैया जसोदा बाबा आनंद नहीं रह सकते थे। यह है प्रेम का प्रतीक। एक हिंदी में कहावत है कि आप कहे के तो सब कोई आपन, आपन कहा है वाला केवा। सभी लोग अपने कहाते हैं, लेकिन अपना कहने वाला कौन है? कौन व्यक्ति साथ देने वाला है? कोई मर गया मर गया, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, अरे कोई प्रेम नहीं, कोई दुख नहीं। जैसे मां का पुत्र, छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे के प्रति मां की कितना प्रेम रहता है, मां कितना कृपा दृष्टि रखती है, मां की कितनी व्याकुलता होती है, मां अपने बच्चों के लिए तड़प जाती है, वैसे भगवान के प्रति, याद रखिए, गोपियों का प्रेम था, यशोदा मैया का, नंद बाबा का प्रेम था, उनके बिना वे नहीं रह सकते थे। रोते रहते थे, सब रोने लगे। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कोई रोता है? नाम जब पूरा नहीं हुआ तो क्या आंखों से अश्रु बहती है? नहीं, मन दूसरे जगह लगा हुआ है, जागृति नहीं है, काम में पैसा में मन लगा हुआ है, वासनाओं में मन फंसा हुआ है, भगवान के लिए कोई विरह नहीं, कोई आंखों से अश्रु नहीं, तो कैसे भगवान मिलेंगे? लेकिन इन गोपियों को देखिए, ब्रजवासियों को देखिए, कितना प्रेम है, भगवान के लिए अपना प्राण देने को तैयार हो गए। दौड़ते हुए यशोदा मैया, नंद बाबा, उपनंद सभी ग्वाले आए और जम उस काली हरद में कूदना चाहते थे। बलराम जी ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। बलराम जी एक थे ना, अनेक रूपों में हो गए और सबको रोक दिए, कूदने नहीं दिए। सभी लोग तो रो रहे थे, याद रखिए, सभी लोग रो रहे थे लेकिन बलराम जी हंस रहे थे। बलराम जी नहीं रो रहे थे क्योंकि बलराम जी जानते थे कि प्रभु लीला कर रहे हैं, इनका इनकी नाटक है, भगवान की लीला से परिचित थे, इसीलिए बलराम जी को भगवान नहीं लिए थे। ये माता पिता को रक्षा करेंगे, रोक लेंगे, जमुना जी में कूदने नहीं देंगे। तो उस समय कालीनाग अपनी कुंडली में भगवान कृष्ण को पूरा लपेट लिया था, लगभग दो घंटे तक रखा, भगवान निश्चिंत पड़े रहे। जब भगवान ने देखा कि मेरी माता, मेरे पिताजी और मेरे सखागण सब व्याकुल हैं मेरे लिए, तब भगवान ने अपने शरीर का एक्सपेंशन किया। जब कालिय नाग अपनी कुंडली में बांध लिया तो भगवान ने अब अपने शरीर को बढ़ाना चालू किया। शरीर को भगवान बढ़ाने लगे। जब बढ़ाने लगे तो कालिय नाग की जो कुंडली है उसका जो शरीर है बिल्कुल चरचराने लगा। अब धीरे धीरे वो छोड़ने लगा, मैंने उसी कुंडली से भगवान का जो शरीर है बिल्कुल विशाल हो गया। अब वह भगवान को नहीं बांध सका। भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान तो प्रेम में बनते हैं ना, ऐसे कोई नहीं बांध सकता। दुर्योधन बांध नहीं सका, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, हाँ दुर्योधन बांध ही ने बोले ना, पद के नीचे पताल देख, कोई नहीं बांध सकता। लेकिन यशोदा मैया ने बांध लिया। भगवान प्रेम की बंधन में है, याद रखिए। कुंडली में अब कालिय नाग नहीं बांध सका, उसकी कुंडली चरचराने लगी और भगवान ऊपर आ गए। सब ग्वाल बाल देखे, मैया ने देखा, बाबा ने देखा, देख करके बिल्कुल प्रसन्न हो गए कि मेरा लाला बिल्कुल स्वस्थ है। इसके बाद जब भगवान उसके चंगुल से छूट गए तब कालिय नाग इसे देखने लगा, फण को ऊंचा करके और फुफकार मारने लगा, विष उगलने लगा आंखों से, मुखों से। इसके बाद वह भगवान को डसने का प्रयास करने लगा। अब दोनों तरफ से पैंतराबाजी होने लगी, जल में है याद रखिए, विषैले जल में। अब भगवान दोनों तरफ से पैंतराबाजी, लेफ्ट राइट होने लगा। कालिय नाग भगवान को डसना चाहता है, पहले तो डसा फिर वह डसना चाहता है और भगवान अब उसके साथ पैंतराबाजी करने लगे। आक्रमण किया तो बाएं हो जाते, जो बाएं तरफ जाता तो दाएं हो जाते, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट युद्ध होता रहा। ऐसे करते 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 भगवान कालिय नाग को परास्त कर दिए। कालिय नाग पैंतराबाजी करते 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 हार गया। भगवान सभी कलाओं में प्रांगत हैं, 64 कलाओं को सीखकर आए थे उज्जैन से 64 दिनों में। जल में किस तरह क्रीड़ा करनी चाहिए इसमें भगवान प्रवीण हैं। उनका नाम है नटवर, जो नृत्य कला में बिल्कुल प्रवीण है। अब वह थक गया, कालिय नाग जब थक गया पैंतराबाजी में, तब भगवान ने अपनी बाएं भुजा को ऐसे ऊपर फैलाया। भगवान तो जल के अंदर है, उसका फण ऐसे ऊंचा है, अपने भुजाओं को भगवान ने ऐसे फैलाया और अपने हाथ से भगवान ने उसके फण को दबाया और दबा करके भगवान छलांग मारे, छलांग मार करके उसके फण पर चढ़ गए और चढ़ करके भगवान नृत्य करने लगे। अब भगवान कालिय नाग के फण पर नृत्य करने लगे। देखिए बहुत सुंदर ये प्रसंग है। भगवान उसके फण पर चढ़ गए, एक सवेक फण था। जब नित करने लगे तो वह एक एक फण को उठाता था ऊपर दसने के लिए, और भगवान उसके फण को कुचलते गए। जिस फण को उठाता उस फण को कुचल देते। भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, सोचिए। तो सारे जगत का भार तो भगवान के अंदर है, तो सोचिए भगवान में कितना भार है। और काली नाग के ऊपर भगवान सवार हैं, अपने पांवों का प्रहार करते थे, ताथई ताथई कह करके भगवान नाचते थे। बहुत सुंदर भगवान ने नृत्य किया। और थोड़ा सा और सुने, बहुत सुंदर ही प्रसंग है, बड़ा मजेदार प्रसंग है। भगवान की भुजाओं का बल देखिए, भगवान की भुजाओं में ताकत है। कहा जाता है कि भगवान का लंबा हाथ होता है। जब गोवर्धन लीला में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो ब्रजवासी छपनों व्यंजन का भोग लगाए, तो भगवान ने सोचा कि अब एक रूप से काम नहीं, एक दो हाथ से काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने झट से वहां चतुर्भुज स्वरूप धारण किए, चार भुजा रूप में हो गए। चारों भुजाओं को देखिए, भोग सामग्री तो नीचे है और भगवान गोवर्धन पर्वत के ऊपर हैं। अपनी हाथों को भुजाओं को फैलाए, देखिए भगवान का हाथ कितना लंबा होता है। भुजाओं को फैलाए भगवान और हाथों को बढ़ा करके विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को उठाकर गपा गप भोग लगाने लगे। सारे व्यंजनों को भगवान खा गए। आप सुने कथा में, सारे ब्रजवासी कहे भगवान हाथ जोड़ करके, फिर भगवान मांगे आनो रे और लाओ और लाओ। तो भगवान एक रूप से तो ऊपर हैं और एक रूप से नीचे हैं, हाथ जोड़कर कहे कि हे प्रभु, हम सब गरीब बालक हैं, हम लोग के पास जो भी सामग्री थी सारी सामग्रियों को हम सब आपको अर्पण कर दिए, आप इसी से संतुष्ट हो जाइए। तो भगवान मानस गंगा का जल पिए और कहे तृप्त अस्मि, मैं संतुष्ट हूं संतुष्ट हूं संतुष्ट हूं। फिर जैव कहते हैं भगवान भोग सामग्री को भर दिए, मतलब अपनी भुजाओं को फैलाकर। देखिए भगवान का हाथ कितना लंबा है, भुजाओं को फैलाकर भगवान भोग सामग्री को ग्रहण कर लिए। और लीलाओं को देखिए, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था नृग, नृग एक राजा थे। दशम स्कंद में कथा आती है, पृथ्वी में जितने राजकण उतने दान किए थे गौओं को, सोचिए बहुत बड़े दानी थे। लेकिन भूल से दान की हुई गाय को एक दूसरे ब्राह्मण को दान किए थे, उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया जिसके प्रभाव से ये गिरगिट बन गए थे। तो द्वारिका के कुएं में गिरे थे, अन्य ग्वालों ने देखा, निकालने का प्रयास किया, फिर भी उस गिरगिट को नहीं निकाल पाए हैं, वो नीचे था, सभी हार गए। लेकिन भगवान को सूचना मिली, सूचना दी भगवान को, भगवान गए अपने हाथों को नीचे बढ़ाए और तुरंत से उसे नृग को बिल्कुल नीचे से ऊपर कर दिए, कुएं से निकाल दिए और उस शरीर से मुक्त हो गया, मुक्त होकर के अपने लोक में चला गया। तो भगवान का हाथ देखिए, चाहे कृष्ण अवतार हो चाहे रामा अवतार हो, सभी अवतारों में भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। रामा अवतार में भी भगवान ने भगवान की लीला देखिए। काकभुसुंडी जी का नाम आप सुने हैं, अभी प्रसंग आएगा। काकभुसुंडी जी जो कौवे के रूप में रहते थे, और कौवे के रूप में रहकर भगवान के हाथ से, राम जी के हाथ से वे माखन और मालपुआ खाते थे, छीन करके भाग जाते थे, खाते थे। अयोध्या में काकभुसुंडी जी भगवान के हाथों से मालपुआ छीन करके भागे, भगवान ने उनका पीछा किया, राम जी ने पीछा किया, वो भागे जा रहे थे। तो देखिए भगवान की लीला देखिए, जब काकभुसुंडी जी भागे तो भगवान ने क्या लीला किया, भगवान ने अपनी भुजाओं को फैला दिया। तब काकभुसुंडी राम जी तुम्हारा से वर्णन है, तब मैं भाग चलूं उर्गारी, राम गहन का भुजा पसारी। भगवान ने अपनी भुजाओं को पसारा, जिमिजिमि दूर उड़ाऊ आकाशा, तह भुज हरि देखाऊ निज पासा। काकभुसुंडी जी जहां जहां उड़ करके जाते थे वहां वहां देखते थे कि भगवान की भुजाएं मेरी पीछा कर रही है, केवल दो अंगुल की दूरी है, लगता है मुझे पकड़ लेंगे। इतना लंबा भगवान का हाथ है, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजाई मोहितात, ऐसा है। ब्रह्मलोक तक भाग करके गए हैं, जहां भी गए वहां तक भगवान अपनी भुजाओं को फैलाते रहे। तो ये है भगवान की भुजाओं का बल। तो उसी प्रकार से यहां भी कालिये नाग ऊपर है, फण उसका ऊपर है, भगवान नीचे है, छोटा सा बालक, 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे, मतलब 7 वर्ष से नीचे है भगवान, 6 वर्ष के हैं। इस अवस्था में भगवान ने छोटा सा बालक माने कालिये नाग को फण को अपनी भुजाओं के बल से दबा दिए और जम मार करके चढ़ गए और नृत्य करने लगे। भुजाओं का बल है, इसलिए भगवान का हाथ लंबा होता है, भगवान की जो भी शरण में आते हैं उनका कल्याण हो जाता है। हम सही भाव सागर में तैर रहे हैं, जो भक्त हैं भगवान का नाम लेंगे तो भगवान अपनी भुजाओं को, वैकुंठ से भी अपनी भुजाओं को फैला करके भगवान आपको पकड़ लेंगे, भाव सागर से टांग करके विमान पर बैठा देंगे, पार कर देंगे, वैकुंठ में बुला लेंगे, ग्लोक में बुला लेंगे। ये है भगवान की भुजाओं का बल। इसलिए हम सभी को नाम के आश्रय में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को कहा जाता है कि भगवान की ऐसी भी भुजाएं लंबी होती हैं, भगवान अजानुबाहु हैं, घुटने से नीचे तक भगवान की भुजाएं हैं, अजानुबाहु कहा जाता है। भक्तों को भवसागर से खींचते खींचते भगवान की भुजाएं लंबी हो गई है, ऐसे भक्त लोग एक भाव प्रदान करते हैं। भगवान बहुत है, कृपालु है, दयालु है। अब देखिए सांप के ऊपर भगवान अब नृत्य कर रहे हैं। जब भगवान नृत्य करने लगे तो वहां पर देवता सेध चारण नाग किन्नर गंधर्व सभी उपस्थित हो गए, वाद्य लेकर के उपस्थित हो गए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है, उसको देखिए कैसे भगवान नाच रहे हैं। वर्णन है जैसे शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य बहुत तीव्र गति से शिव जी करते हैं, तांडव गति के समान भगवान कालियन नाग के फण के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि तांडव गति मुंडन पर नाचित गिरधारी। दृश्य को देखिए, मन की गति से चिंतन कीजिए, या टीवी में आप देखे होंगे भगवान कैसे कालिय नाग के फण के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। मन की गति से वहां चले। तांडव गति मुंडन पर नाचित गिरधारी, पंपम पंपम पटकत फम 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 फनिन पर, पंपम पंपम पटकत फम 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 फनिन पर, बिम्बिम बिम बिनत करी नाग बपुधारी। पम पम भगवान अपने पांव को पटक रहे हैं और बार बार अपने फणों को ऊपर कर रहा है, भगवान उसके फणों को कुचल रहे हैं। और ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम मम महादेव बम बम बलिहारी। और देवता लोग आकाश मार्ग से सब लीलाओं को देख रहे हैं। विविध विविध विद्याधर दम दम देव सकल, गम 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 गुनी गंधर्व नाचत देतारी। वह सीध चारण नाग किन्नर गंधर्व सब भगवान के नृत्य पर वाद्य बजा रहे हैं। जैसे भगवान नृत्य कर रहे हैं वैसे देवता वाद्य बजा रहे हैं। गंधर्व कला में देवता सब प्रवीण हैं, जो नाच गाने में, जो नाचने में गाने में प्रवीण हैं उन्हें गंधर्व कहा जाता है। अभी गंधर्व लोग से ही पृथ्वी पर आए हैं तो उनमें एक गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूरदास प्रभु की वान किम किम किनहु न जान, धन 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 चरण प्रकट निर्भय भयहारी। निर्भय होकर के भगवान अपने चरणों का प्रहार कर रहे हैं कालिय नाग के फण के ऊपर। इस प्रकार से तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, भगवान तीव्र गति से कालिय नाग के फण पर नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नाचते नाचते भगवान ने कालिय नाग के फण को, एक सवेक फण थे ना, हजार फणों में बदल दिए। उसके फण फट गए, आगे वर्णन है, हजार हजार फण हो गए उसके। उसके फणों पर मणि थी, वो मणि चमकता था, लाल मणि था। मणियों के प्रभाव से भगवान के चरण बिल्कुल लाल में रक्त में दिखते थे, और फच फच तो उसे फून के फवारे भी आ रहे थे जो भगवान के पांव पर पड़ते थे, इससे उनकी शोभा बढ़ गई। भगवान की ऐसे भी उनकी जो तलवे हैं उनकी तलों में लालिमा है। तो कालिय नाग के फण पर नृत्य करके भगवान ने कालिय नाग के फणों को कुचल दिया, और कुचल करके उसका मान मर्दन किया, कालिय नाग बिल्कुल प्रास्त हो गया। तब नाग पत्नियों ने देखा, कालिय नाग की पत्नियों ने देखा कि अब प्रभु हमारे पति को मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो कालिय नाग की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां जिसे कहा जाता है, वे सब पत्नियां आई और आकर के सब भगवान की स्तुति करने लगी, अपने बच्चों के साथ आई। 21 श्लोकों में स्तुति है, बहुत सुंदर है। और वे सब कहने लगे, कालिय नाग तो मूर्छित हो चुका था भगवान के प्रहार से, आई और इसके बाद आकर के स्तुति करने लगी। कुछ श्लोकों को हम श्रवण कर लेते हैं। घबराइएगा मत, थोड़ा और लीला इसमें है, उसको हम श्रवण कराएंगे। कालियानाग पूर्व जन्म में क्या था, बहुत सुंदर। शॉर्टकट करना अपने बस की बात है, प्रवक्ता की बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कालियानाग की पत्नियों ने कहा, हे प्रभु, आपने इस अपराधी को दंड दिया है क्योंकि इसने अपराध किया है, आपने बहुत अच्छा किया है। आपने इस जगत में ऋषालु तथा कुर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है। आपने अवतार लेकर के इस अपराधी का दमन किया है, इसके लिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हैं। ये आपकी अहेतुकी कृपा है। आपने जो कुछ यहां किया है वास्तव में यह है हम लोगों के ऊपर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को दंड देने के लिए ही अवतार लेते हैं और उनके कलमश को दूर कर देते हैं। यह हम लोग का पति है लेकिन इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतः इसके प्रति आपका यह क्रोध, उनके प्रति आपकी कृपा ही समझनी चाहिए। आपने इसके ऊपर जो अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है और इसका जो मान वर्धन किया है, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्व रहित होकर के तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से प्रीत होकर सावधानी से तपस्या की थी? क्या इसलिए आप उससे प्रसन्न हैं? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्ण धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था? क्या इसलिए आप प्रणधार आप उससे संतुष्ट हैं? करे किसने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिनके प्रभाव से आपने इनके सिर के ऊपर अपने चरणों को अंकित किया, इन्हें निर्भय बनाया? ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वांछन्ति यद पादरज प्रपन्नः। हे प्रभु, जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर ली है, वे न तो स्वर्ग का राज्य न असीम राज्य न ब्रह्मा का पद न पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें जो की सिद्धियां तथा मोक्ष तक में भी कोई रुचि नहीं होती है। इसका तो इनका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरण चिन्ह को प्राप्त किए और आपने इन्हें निर्भय बना दिया। इस प्रकार नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर स्तुति किए, स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और कालिय नाग के फण पर से उतर गए। और कालिय नाग ने भी चार श्लोकों में भगवान को संबोधन किया है, वो भी स्तुति किया है। कालिय नाग ने कहा कि सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद्ध स्वभाव जिसे वे असत्य से अपने को अपनी पहचान करते हैं छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार की व्यक्तित्व तथा योनियां, नाना प्रकार की इंद्रियें तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से ही सदैव क्रोधी हैं। इस तरह आपकी दुस्त्यज माया शक्ति से मुग्ध होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं? सर्प को तो क्रोधी होना उनका स्वभाव ही है, भगवान ने तमगुणी उन लोगों को बनाया है। कहते हैं, हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपया करके आप जो भी उचित समझें हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या चाहे दंड दें। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कालिय के शब्द सुनकर के भगवान ने उत्तर दिया कि हे सर्प, अब तुम और तुमको अधिक समय तक यहां नहीं रुकना चाहिए। तुरंत ही अपने बच्चों, पत्नियों तथा अपने मित्रों एवं संबंधियों समेत अपने घर लौट जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ। अब इस नदी को गांवों तथा मनुष्यों द्वारा भोगी जाने दो। अब यहां से चले जाओ और रमणक द्वीप में जाकर के निवास करो। अब तुझे गरुण का भय नहीं रहेगा क्योंकि तेरे सिर पर मेरा चरण चिन्ह अंकित हो गया है, इसलिए अब तुझे गरुण नहीं खाएंगे। इसलिए अपने परिवार के साथ तुम यहां से रमणक द्वीप में चले जाओ। रमणक द्वीप है, देखिए, पृथ्वी के नीचे सात लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल। तो महातल में कालीय नाग रहता है। कद्रु, कद्रु के पुत्र है कालीय नाग, कश्यप जी की पत्नियां थी कद्रु, तो महातल में कालीय नाग का निवास है। तो कालीय नाग इस प्रकार से, अब देखिए, भगवान के शब्दों को सुनकर, दिव्य वाणी को सुनकर कालीय नाग ने सुंदर वस्त्र, देखिए कालीय नाग स्वागत कर रहे हैं भगवान को, सुंदर वस्त्र, मलाएं, मणियां तथा अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधित लेप्य, कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इस तरह है, गरुण ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालियों को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिये ने भगवान की परिक्रमा की और नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों, बच्चों को साथ लेकर वह समुद्र में स्थित अपने रमणक द्वीप चला गया। कालिये के जाते ही यमुना नदी अपने मूल रूप में विष से विहीन तथा अमृतमय जल से परिपूर्ण हो गई। यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपनी लीलाओं को आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने वृंदावन में विषैले माने काली हरद को, काली नाग का मान मर्दन करके, उनको अभयदान दे करके पुनः रमणक द्वीप में विदा कर दिया और यमुना जी का विषैला जल अमृतमय जल में बदल गया और सारे ब्रजवासी अब उस जल को पान करने लगे। इस प्रकार से यमुना जी बिल्कुल अमृतमय हो गई। तो अब सुनिए, थोड़ा सा बहुत सुंदर प्रसंग है जिसको जानना बहुत जरूरी है। कालीय नाग कौन था पूर्व जन्म में, संक्षिप्त में सुनिए। गर्ग संहिता में वर्णन है कि वेदशिरा और अश्वशिरा नाम के दो ऋषि थे, मुनि थे। दोनों तपस्वी थे और वेदशिरा मुनि जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, तो वे बिंद पर्वत पर, विंध्याचल बिंद पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तो वहीं पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि भी गए। वेदशिरा मुनि ने देखा कि अश्वशिरा मुनि भी मेरी तपोस्थली पर आ गए, यहां तप करने के लिए, जहां मैं तप कर रहा हूं उसी स्थान पर ये भी तप करने के लिए आ गए। ये बातें उनको अच्छी नहीं लगी और रोष पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या मत करो, क्योंकि यहां तुम्हारी तपस्या सुखद नहीं होगी। हे तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप के लिए भूमि नहीं है? क्या मैं जहां तप करता हूं यही भूमि है तुम्हारे लिए? आप दूसरी जगह चले जाइए। वेदशिरा की यह बात सुनकर के अश्वशिरा मुनि ने कहा, उनके नेत्र कोल से लाल हो गए और कहे, हे मुनिश्रेष्ठ, यह भूमि महाविष्णु की है, यह भगवान की भूमि है, न हमारी है न तुम्हारी है। यहां कितने मुनियों ने उत्तम तप किया है, तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकार मारते हो, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूं, तुम सर्प की योनि में चले जाओ। साधु मुनि भी बहुत क्रोधी होते हैं। शिक्षा लीजिए, स्थान पर तप मत करो, मतलब याद रखिए, यहां बैठने की जो प्रक्रिया है थोड़ा सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहां बैठते हैं, कहां बड़े बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, कहां प्रेसिडेंट बैठते हैं। जो उनके स्थान है, याद रखिए, उनके स्थान को मैंने सुरक्षित रखना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। स्थान के लिए तो झगड़ा हो गया ना। देखिए, ये ऋषि मुनि है, एक सर्प बन गए और एक कौवा बन गए। तो वेदशिरा ने भी साफ दिया, तो अश्वशिरा ने साफ दिया उनको, तो वेदशिरा भी कहे, दुर्मते, क्योंकि ये तपस्वी है, सबको अपने तप का बल है, तो भी कहे, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है, तुम छोटे से छोटे अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते रहते हो, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूं, तुम कौवा हो जाओ। अब बताइए, देखिए, अब दोनों ऋषि मुनि इस प्रकार क्रोधावेश में एक दूसरे को साप दे दिए, तो तुरंत दोनों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, देखिए, क्योंकि देखिए कि हमारे भक्त हैं, भगवान प्रकट हो गए, भगवान विष्णु, और प्रकट होकर के बोले, वे दोनों एक दूसरे को सांप दे दिए, लेकिन सांप से बहुत दुखी हुए दोनों महात्मा बहुत दुखी हुए कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। तब देखिए भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, हे मुनियों सुनिए, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार से तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। जैसे शरीर की दोनों आंखें समान है, वैसे समान रूप से तुम दोनों मेरे भक्त हो। मैं अपनी बात को झूठी कर सकता हूं, पर मैं अपनी भक्तों की बातों को झूठी नहीं कर सकता। मतलब तुम लोगों ने जो श्राप दिया है, उस श्राप को स्वीकार करना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, हे वेदशिरा, जिसको अश्वशिरा ने श्राप दिया था सर्प होने को, हे वेदशिरा, सर्प की अवस्था में मैं तुम्हारे मस्तक पर दोनों चरण अंकित करूंगा। उस समय तुझे गरुण का कदापि भय नहीं रहेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया वेदशिरा ऋषि को, जो सर्प बन गए, कि मैं तुम्हारे सिर पर दोनों चरणों को अंकित करूंगा, जिसे गरुण का भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रसन्न रहिए, उस जुनी में जाइए, द्वापर युग में मैं आपके फण पर नृत्य करूंगा। और अश्वशिरा से कहे कि हे अश्वशिरा जी, सुनिए, तुम मेरी बात को सुनो, सोच ना करो, काक हृदय में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान बना रहेगा, सर्व सिद्धियों से परिपूर्ण रहोगे और मेरी अखंड भक्ति तुझे प्राप्त रहेगी, इसलिए चिंता न करें। भगवान इस प्रकार दोनों को आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर्धान हो गए। तो वेदशिरा कालिय नाग बने, अश्वशिरा काकभुसुंडी जी बने। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है? साधु महात्मा बनने के बाद भी स्थान के लिए झगड़ा हो जाता है। मतलब अमानिना मान देना कृतनियो सदाहरी। हमारी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, वैष्णवों को सम्मानित करना चाहिए। कोई भी वैष्णव आते हैं, आप छोटे हैं, सीनियर हैं, आप खड़े हो जाइए, स्थान दे दीजिए, ऐसे आप वे प्रसन्न हो जाएंगे और आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। हम लोग अपने हृदय की बात बोलते हैं, अनुभव की बात। अगर किसी वैष्णव को आप प्रणाम न करेंगे तो आपका मन बिल्कुल अप्रसन्न रहेगा, प्रणाम करने से मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए जो भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, सीनियर वैष्णव हैं, उन सबको आसन देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, नहीं तो वो अपना अधिकार जमा देंगे। ये तो तप का प्रभाव दिखा दिए ये तो कौवा बना दिए, सर्प बना दिए, अगर वो गुस्सा हो जाएंगे तो आपको भी यहां से बर्खास्त कर देंगे मरे आपका भी जीवन संकट में पड़ सकता है। तो इसे निष्कर्ष निकलता है कि वैष्णवों को सम्मानित करना चाहिए। मूल बात यह है, यह कालिय नाग का इतिहास, कालिय दमन। भगवान कालिय नाग से, काल से भी लड़ करके, याद रखिए, कालिय नाग से युद्ध करके भगवान ने कालिय नाग को बिल्कुल निर्भय बना दिए। मतलब भगवान कालों के काल हैं। भगवान ने जिसे कालिय नाग को निर्भय बना दिया अपने चरण अंकित करके, तो हम सभी को भगवान के चरणों का आश्रित होना चाहिए। भगवान के चरणों में जो चिन्ह है, ये मांगलिक चिन्ह है, उन्हीं चिन्हों का ध्यान करते हुए हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनके शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार रहने से जैसे कालिय नाग निर्भय हो गया, वैसे हम लोगों का जीवन भी निर्भय हो जाएगा और हम अंत में भगवत धाम चले जाएंगे। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।